जय श्री साई राम। साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीला हमेशा हमें कोई संदेश देती है। कंस को मारना हो या पूतना का वध किया हो, रास लीला की हो या गोपियों के वस्त्रों का हरण किया हो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में मानव को संदेश दिया। जन्म से पहले ही वह कारागृह में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, या यूं कहिए कि चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हीं के आठवें अवतार थे। माता देवकी पिता वसुदेव के सामने खड़े हुए चतुर्भुज नारायण बोले, 11 वर्षों तक मेरा मनन करना, मेरे स्वरूप पर ध्यान रखना, मैं अवश्य आऊंगा। और चंद क्षण के पश्चात वहां पर एक कन्हैया प्रकट हो गया, जिन्होंने माता देवकी को, वसुदेव जी को माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया। देवकी का अर्थ है निष्काम बुद्धि, वसुदेव का अर्थ है सात्विक गुण। जब निष्काम बुद्धि और सात्विक गुणों का संलग्न हो, मिल जाए आपस में, वो 11 इंद्रियां, इंद्रियां 10 मानी गई हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, लेकिन यहां मन को भी एक इंद्रिय की उपमा दी गई है। जब ये सभी मिलकर एकाग्र होकर इकट्ठे होकर प्रभु का ध्यान करते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यही शायद कारण रहा होगा कि भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पार्थ को अपना विराट रूप दिखलाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भगवान बाबा ने एक बार कहा कि तुम केवल 11 सेकंड तक, ओनली फॉर 11 सेकंड, 11 क्षण तक मुझ में ध्यान लगाओ, मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि 11 सेकंड तक भी परमात्मा के ध्यान में डूबे रहना आसान काम नहीं है। इसलिए योग शास्त्र में कहते हैं ना, पतंजलि योग सूत्र में, पहले किसी चीज को देखते जाओ, पहले ठीक से बैठना सीखो, देखना सीखो, करते करते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप समाधि तक पहुंच जाते हैं। भगवान बाबा ने तो केवल 11 सेकंड बोले हैं, लेकिन यहां पर भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण देव की माता को, वसुदेव जी को 11 वर्षों तक निर्देश दिए गए कि मेरा ध्यान लगाना। और 11 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण उस उम्र में आके उन्होंने कंस का वध किया, माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया। जन्म के उपरांत उस समय मथुरा में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, अचानक वसुदेव जी ने कन्हैया को उठाया, एक टोकरी में डाला, अपने सर पे रखा, अचानक उनके हाथ की बेड़ियां टूट गई, पांव की बेड़ियां टूट गई, द्वारपाल सो गए, कारागृह के द्वार खुल गए। बड़ा ताज्जुब होता सुन के, अचानक इतने भीगे मौसम में, तूफानी रात में पैरादार सो गए, नींद लग गई उनको, द्वार अपने आप खुल गए, हाथ की बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई पांव की, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? मस्तक में बुद्धि है, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। कारागृह की क्या बात है? कारागृह का अर्थ है संसार का मोह। सारा संसार इसमें सोया हुआ है, इसमें खोया हुआ है। जो भगवान को अपने मस्तक पे धारण करता है, विराजमान करता है, उसके लिए कारागृह तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। अर्थात ब्रह्म संबंध होने से सारे बंधन टूट जाते हैं। वर्षा ने धरती नम कर दी थी, वसुदेव जी कन्हैया को लेके गोकुल जाना चाहते थे, यमुना पार कर रही है, लेकिन अपने सुध बुध खोए बैठे हैं। यमुना में उफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, पानी बढ़ रहा है, लेकिन वह यमुना में उतर गया, चलने लग गया। चलते चलते पानी उनकी नाक तक पहुंच गया। कन्हैया तो सब जानते थे अगर नाक पानी में डूब जाएगी तो सांस कैसे लेंगे। कन्हैया ने एकदम से अपना नन्ना सा पांव टोकरी से बाहर निकाल दिया। कहते हैं माता यमुना ने जैसे ही कन्हैया के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, अन्य शब्दों में अभिनंदन किया, स्वागत किया, अपने सौभाग्य को सराहा, यमुना का जल नीचे आ गया, वसुदेव जी को रास्ता दे दिया गोकुल जाने के लिए। वाह जी वाह। कहते हैं वहां पर शेष नाग उत्पन्न हो गया या प्रकट हो गया, यहाँ आ गया, उसने अपनी छत्र छाया कर दी काना के ऊपर ताकि वे बरसात में भीगे नहीं। जिसके सर पे परमात्मा धारण हो उन्हें कौन डुबो सकता है? वसुदेव गोकुल पहुंचे, वहां पर योग माया का जन्म हुआ था यशोदा मैया के घर में। कान्हा को रख के योग माया को लेके वापस आ गए। जैसे ही वसुदेव कारागृह में वापस आए, एकदम से सारी बीड़ियां वापस आ गई, द्वार बंद हो गए, द्वारपाल जाग गए और योग माया रोने लग गई। बच्चे की रोने की आवाज सुन के कंस को सूचित किया गया कि बच्चे का जन्म हुआ है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा यहाँ तो कन्या जन्म लिया है, लेकिन आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र उनका वध करेगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कन्या हुई है। फिर भी उन्होंने कन्या को लिया, जैसा ही पटका जमीन के ऊपर मारने हेतु, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कन्हैया के की जगह जब योग माया थी, वहां पर योग माया थी, वह कन्या कंस के हाथ से छूट गई, आसमान में चली गई और भविष्यवाणी हुई, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। जब आप अपने संसार में रहते हुए अपने सर पर माया को रखते हैं, सारी बेड़ियां वापस आ जाती हैं, सारे बंधन वापस आ जाते हैं, सारे कष्ट वापस आ जाते हैं। मेरे आराध्य देव अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त हो गए। 3 साल के थे, इससे पहले कथा याद आ रही है, जब भगवान विष्णु वामन के अवतार में आए थे तो राजा बलि के पास जाके उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। वहां पर राजा बलि की पत्नी विद्यावती और उनकी पुत्री रत्नमाला भी खड़े थे। रत्नमाला ने जैसे ही वामन अवतार को देखा, मन के अंदर एक प्यार जागा, एक ममता जागी, काश मेरा ऐसा पुत्र होता, मैं उसको दूध पिलाती। वामन अवतार में राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी, एक पग में सारा संसार ले लिया, एक में सारी धरती ले ली, तीसरा पग कहाँ रखें? तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। वामन जी ने राजा बलि को पाताल लोक में धकेल दिया। रत्नमाला बड़ी परेशान हुई, बड़े क्रोध में आ गई, इस बालक को मैं दूध नहीं विष पिलाऊंगी। ऐसी धारणा मन में उत्पन्न हुई, वो रत्नमाला पूतना बनकर आई थी। भगवान कृष्ण 3 वर्ष के थे, पूतना का कल्याण हुआ। असल में भगवान कृष्ण ने दूध पीने के तरीके से पूतना का वध कर डाला। पूतना चतुर्दशी का दिन था, वो चतुर्दशी क्यों? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, 1 चित, 1 अहंकार, ये 14 और 1 बुद्धि, ये 14 ठिकाने हैं जहां पर पूतना विराजमान हो सकती है। इन 14 ठिकाने में पूतना को ना आने दें। पूतना का मतलब है राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण, लेकिन जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित नहीं रहते, तब समस्याएं आती हैं। विचार कीजिएगा, सात वर्ष की उम्र थे, गोवर्धन पूजा आपने नाम सुना होगा, उसकी कहानी बता रहे हैं। राजा इंद्र की पूजा की तैयारियां चल रही थी। कन्हैया बोले कि राजा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन हमें वर्षा देता है, गोवर्धन में पेड़ पौधे हैं, पर्वत में पेड़ पौधे हैं, उससे बादल अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उससे बरसात होती है, हमारी गैया हमें दूध देती है, हमें गोबर देती है, हमारे जीविका चलती है गाय के दूध से, तो हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ये बातें इंद्र को पसंद नहीं आई, उनका अहंकार जाग उठा, उन्होंने मूसलाधार वर्षा कर दी, मूसलाधार, चारों तरफ त्राही त्राही बच गई, बाढ़ आ गई। 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली में पूरे पर्वत को उठा लिया, सबको आश्रय दिया, सबको श्रेय दिया, इंद्र का विमान चूर चूर हो गया। इंद्र का मतलब था यहां पर अभिमान, वर्षा का मतलब था वासनाओं की वर्षा। जब आपके जीवन में अभिमान आपको तंग करे, वासनाओं की वर्षा होने लग जाए, तो आप अपनी छोटी उंगली का सहारा लीजिए, जो सात्विकता की प्रतीक है। सात्विकता का अर्थ है अच्छे ग्रंथ, सत्य ग्रंथ, सत्य का साथ, सात्विकता का साथ, संतों का साथ। ये आपके नैया को पाल लगाएंगे। 11 वर्ष में कंस को मार दिया। कंस हमेशा व्यस्त अस्थि और प्राप्ति में, अस्थि और प्राप्ति उसकी 2 पत्नियां का नाम है। अस्थि का मतलब जो मेरे पास है, प्राप्ति जो मुझे चाहिए। कंस को क्यों दोष दें? क्या हमारे जीवन में ये समस्या नहीं है? हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए? सारा रोना इसी चीज का है। ये चीजें हैं और ये चाहिए। चाहे हम कितना भी घर में सामान इकट्ठा कर ले, मन में इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। There's no end to this। अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति। जब इंसान अस्थि और प्राप्ति में डूबा रहता है तो वह कंस बन जाता है। और अस्थि और प्राप्ति से बाहर निकलने के लिए हमारे को पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, एक बुद्धि, एक चित्त, एक मन, एक अहंकार, इन पर हमारे को संतुलन करना है, संतुलित करना है इनको, उस पर नियंत्रण पाना है, तभी इससे बाहर निकल पाएंगे, तभी हमारे भीतर बैठे हुए कंस का वध हो पाएगा। विचार कीजिएगा। ये भी कहा जाता है कन्हैया ने एक बार गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए। गोपियां यमुना में स्नान करने गई थी, नगर अवस्था में थी, और वस्त्र उठा के पेड़ में जाके बैठ गए। क्या भगवान कभी आपके वस्त्रों को चोरी करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। शरीर को वस्त्र छुपाता है, सही बात है या नहीं? आत्मा को वासना छुपाती है, काम वासना खासकर। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। वह तो बुद्धिगत अज्ञान और काम वासनाओं में जो लोग लिपटे हुए उनकी चोरी करते, उन वस्त्रों की चोरी करते हैं। गोपियों का अभिमान था, वह नारी हैं, विस्त्री हैं। ये भी कहा जाता है कि युगों युगों तक जो योगी, संत, साधु तपस्या कर रहे थे, उम्र के साथ साथ उनका शरीर शिथिल पड़ गया, कमजोर हो गया, लेकिन मन में से काम की वासना नहीं गई। वो साधु संत गोपी का रूप धारण करके या गोपी के रूप में प्रकट हुए थे, आए थे। उन्होंने अपने आप को कन्हैया को, कृष्ण को अर्पित कर दिया, सारी वासनाएं परमात्मा को अर्पित कर दी। वो वासना उपासना बन गई। इसीलिए रास लीला में दिखाया जाता है एक कन्हैया इतनी गोपियां नाच रही हैं। रास में आत्मा और परमात्मा का मिलन है, श्री कृष्ण की काम पर विजय लीला है। रास लीला का चिंतन करने से, केवल चिंतन करने से वासना नष्ट हो जाती है। रास लीला को साधारण स्त्री की लीला नहीं है। वही ऋषि मुनि है जो अपने देह को भूल चुके, अपने बॉडी को, बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल चुके हैं। वे टोटली इन टोटैलिटी परमात्मा में डूब चुके हैं। कहने का तात्पर्य है, भक्ति रस में इंद्रियों को डुबो दें तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। सुदर्शन चक्र ते शिशुपाल को मारा, सुदर्शन शुभ दर्शन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए हमें सबके भीतर परमात्मा के दर्शन होने लग जाए। कोई कहता है उनकी एक पत्नी थी, कोई कहता है आठ पत्नियां थी, कोई कहता है 16,008 पत्नियां थी। क्या वाकई में सोचते हैं किसी के 16,008 पत्नियां हो सकती हैं? हमारे हृदय में 8 पंखड़ी वाला कमल का फूल माना जाता है। जब हृदय का चक्र खुलता है वहां पर 8 पंखड़ी वाला फूल खुलता है कमल का। और सहस्रार चक्र हमारे जो सर के ऊपर है वहां पर 1,000 पंखड़ियों का कमल का फूल खुलता है। हर कमल के फूल की 16 कलाएं हैं। अर्थात 16,000 कलाएं हमारे सर के ऊपर हैं, 8 हमारे हृदय में है, 16,008 ये पंखुड़ियां जो हृदय में उस सारा चक्र में खुलती हैं, उन्हीं को कहा गया 16,008 पत्नियां भगवान कृष्ण की। विचार कीजिएगा, वही भगवान कृष्ण हाथ में बांसुरी लेके घूमते थे और सारी गोपियां जलती थी उनसे, अरे बंसी तूने कौन सी तपस्या की जब भगवान तुझे अपने मुंह से लगाते हैं, अपने होठों से लगाते हैं। बांसुरी खोखली होती है, बांस होता है, उसमें छेद होते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में छेद हैं। अगर हम अपने आप को अपने भीतर से खोखला कर दें, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को निकाल दें, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दें, तो परमात्मा की सांस हमारे शरीर में से बहेगी, हमारे मन में से बहेगी, हमारे तन में से बहेगी, हमारे धन में से बहेगी। परमात्मा की आवाज ही हमारी आवाज बन जाएगी, क्योंकि हमने अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा को अर्पित कर दिया अंदर से खोखला करने के पश्चात। हमारे को क्या बनना है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, ताकि हमारे को लेके अपने होठों से हमारे भीतर से लय निकाले, राग निकाले, संगीत निकाले। जय श्री साईं राम।